अर्चना, आप उन 7 युवाओं में शामिल हैं जिन्हें दुनिया भर से महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के पर्यावरण पर युवा सलाहकारों के समूह में शामिल किया गया है। तो जलवायु मुद्दे पर किन कार्यों के लिए आपको ये सम्मान मिला है और अब तक के अपने सफर के बारे में कुछ बताइए।
मेरा नाम अर्चना सोरेंग है। तो अगर मैं खड़िया आदिवासी समुदाय से आती हूँ, तो अगर मैं अपने खड़िया आदिवासी समुदाय की जो भाषा है उससे अगर मैं देखूंगी जो, तो मेरा जो नाम है सोरेंग उसका मतलब है पत्थर, रॉक। तो ये दिखाता है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय की जो जीवन शैली है प्रकृति से जुड़ी हुई है, और इस कदर प्रकृति से जुड़ी हुई है कि वो अपने नाम के साथ प्रकृति को भी जोड़ते हैं। तो इसी तरह मैंने बचपन से ही, मतलब हमारे जो परिवार के बुजुर्ग है, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, ये सभी लोग जंगल संरक्षण करने के लिए गांव में कमेटी बनाए थे, और इसी तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जंगल सुरक्षा और प्रकृति को बचाने की प्रक्रिया चलाते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने बचपन से देखा है। फिर उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में रेगुलेटरी गवर्नेंस में, तब मैंने एनवायरमेंटल रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि जिस तरह से हमारी जो आदिवासी समुदाय है प्रकृति को बचाती आ रही है और जिस तरह से जीवन शैली जी रही है जो प्रकृति से जुड़ा है, तो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए वो अपनी जो संस्कृति है और उनकी जो भी इतिहास रही है उसके बारे में लिखा जाए। तो तभी से मेरे में वो रुचि आई कि मुझे एक आदिवासी समुदाय का हिस्सा होने के साथ साथ ये मेरी कर्तव्य है कि मैं समुदाय के बारे में लिखूं, रिसर्च करूं कि किस तरह से हमारे आदिवासी समुदाय कंट्रीब्यूट कर रही है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेके और इकोलॉजिकल हार्मनी या रेस्टोरेशन के लिए वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। तो तभी से मैंने 2018 से लेके 20 तक मैंने उड़ीसा में कई जगहों में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा में जा जाके मैंने रिसर्च किया है कि उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस क्या है और वो किस तरह से जंगल सुरक्षा कर रहे हैं।
तो आदिवासी संस्कृति और वनों से आपका अटूट संबंध रहा है, तो ये जो आपकी पृष्ठभूमि है इसने आपके लिए बदलाव के दरवाजे किस तरह खोले?
तो सबसे पहले तो बदलाव की जो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि दुनिया को बताना कि किस तरह से ये आदिवासी समुदाय जंगल सुरक्षा कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूं, तो अगर आप देखेंगे कि अभी किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन का एक समस्या बहुत ही बड़ा समस्या है, तो अगर मैं आदिवासी समुदाय में देख रही हूँ कि किस तरह से वो लोग पत्ता से प्लेट बना रहे हैं और किस तरह से पत्तों से चेयर्स, टेबल्स ये सारा बना रहे हैं, किस तरह से वो लोग कारपेट्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो अगर आज के दिन में अगर हम लोग इसको एज अ अल्टरनेटिव यूज करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो सकता है। तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत जरूरत है ये सारे जो उनकी प्रैक्टिसेस है उनके बारे में लिखा जाना बहुत जरूरी है और उन सबको हाईलाइट करने की बहुत जरूरी है। जब आप लोग ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। ऊपर से किस तरह से जो आदिवासी समुदाय है जो कम्युनिटेरियन वे में वो लोग जंगल को जाते हैं सुरक्षा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी फॉरेस्ट फायर का भी काफी समस्या रहा है, तो हमारे आदिवासी समुदाय जब भी समर सीजन आता है वो लोग हमेशा जंगल में जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए और जो सूखी पत्ती रहती है उसको हटाने के लिए लाइंस बनाते हैं ताकि अगर जंगल में आग भी लगे तो वो आग सब तरफ ना फैले, और अगर कुछ कारणवश जंगल में आग भी लग जाता है तब भी वो उसको बुझाने के लिए जाते हैं। और इस तरह से कई गांवों में हर रोज आज भी महिलाएं और आदिवासी समुदाय के लोग फॉरेस्ट पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं ताकि कोई आके जंगल से पेड़ चुरा ना ले, काट ना ले, और साथ ही साथ उन्होंने ये नियम कानून भी बनाया है कि किस तरह से जंगल को सुरक्षा करना है इन टर्म्स सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लिटरेचर नहीं है ज्यादातर इस पे, मतलब इस चीज पे ज्यादातर लिखी नहीं गई है, और अगर कोई भी लिखा है तो वो बाहर के जो लोग हैं उन्होंने लिखा है, लेकिन आदिवासी समुदाय से काफी कम लोगों ने लिखा है। ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ कि आज हमारे पूर्वज हमारे साथ है, जैसे हमारे पापा हो गए, नानी वगैरह हो गए, लेकिन कल को ये नहीं रहेंगे। तो अगर हम आज अपने समुदाय के इतिहास और कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं लिख पाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या ऐसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति और कॉन्जर्वेशनल प्रैक्टिसेस क्या थी। अगर आज ये लुप्त हो जाती है तो आने वाले पीढ़ी के पास कुछ होगा ही नहीं क्लाइमेट सॉल्यूशन देने के लिए। और ये बात मुझे तब भी रियलाइज हुई जब मेरी पिताजी की डेथ हुई 2017 को। He himself was a practitioner of indigenous health care. तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि द नॉलेज विच ही गॉट फ्रॉम हिज फादर और हिज एंसेस्टर वो कैसे सीखे। उसको फॉर्मल एडुकेशन नहीं मिला बट इट वॉज इन द ट्रांजिशनल नॉलेज। सो देन आई रियलाइज एंड गॉट द वर्ड कि हमारे साथ जो आदिवासी समुदाय के लीडर्स है उनसे हमें सीखना है और युवाओं को उनके पास जाना है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार समूह में अपने इस पारंपरिक ज्ञान का आप किस तरह उपयोग करेंगी, क्या भूमिका है इस सलाहकार समूह में आपकी और इसमें अभी तक क्या कुछ चल रहा है?
तो ज्यादातर अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो महासचिव की 6 क्लाइमेट एक्शन पॉइंट्स है तो हमारा उसमें ये जो युवा सलाहकार ग्रुप बना है तो हमें उनको सजेशंस देना है, इनपुट्स देना है और फीडबैक्स देना है कि ये क्लाइमेट एक्शन को किस तरह से 6 जो क्लाइमेट एक्शन है सेक्रेटरी जनरल के उसको किस तरह से लागू करवाना है। तो उसमें हमारी यह भूमिका है कि हम लोग जितने भी युवाएं हैं पूरे देश भर में और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनसे बातचीत करना है, उनसे इनपुट्स कलेक्ट करना है और सेक्रेटरी जनरल को देना है। विशेष करके जब हम लोग बोलते हैं कि युवाओं का सहभागी होना चाहिए तो ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात रखने के लिए, तो जिसके लिए हम लोग को सारे युवाओं का मत जानना बहुत जरूरी है और कलेक्टिवली हम लोग उनकी बात रखेंगे। और साथ ही साथ जब मैं क्योंकि मैं एक आदिवासी समुदाय से आती हूँ मुझे ये भी लगता है कि ये जो मुझे मौका मिला है कि हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय की युवा हैं उनकी बात को मैं वहां पे रख पाऊंगी।
तो आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर युवाओं की भागीदारी बहुत अहम है, ये संयुक्त राष्ट्र की इस बार 75वीं वर्षगांठ भी है, तो संयुक्त राष्ट्र किस तरह से युवाओं को बेहतर तरीके के साथ आगे लेकर चल सकता है इन मुद्दों पर?
तो सबसे पहले मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि युवाएं जो है वो आगे की जो फ्यूचर है उसका क्लाइमेट एक्शन की पार्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो भी आगे पॉलिसी बनेगी वो लागू हम युवाओं पे होगी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र युवाओं की बात सुने। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक मौका मिला है हम लोग को मतलब ये जो कमेटी का गठन हुआ है मुझे लगता है कि ये एक तरह का इनेबलिंग यूथ पार्टिसिपेशन है और हम लोग इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से युवाओं की जो भी आवाज है उनको वहां पे प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आदिवासी समुदाय से आती हूँ मुझे ये भी लगता है कि जो परंपरागत जो संस्कृति है और इतिहास है वो बुजुर्ग से लेके युवाओं तक किस तरह से आए, ट्रांजिशन किस तरह से आए, उसके लिए भी मुझे लगता है यूएन की तरफ से काफी चीजें हो सकती है। और अभी हम लोग सेक्रेटरी जनरल से 12 तारीख को अगस्त को मिलने वाले हैं विच इज एन इंटरनेशनल यूथ डे, तो आई फील वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ हिम। और ये जो 2 साल का जो हमारा कमिटी का है हम लोग उनसे एंगेज करके ये सारी मुद्दे उन तक पहुंचा सकते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो जलवायु लक्ष्य हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है, इन लक्ष्यों को हासिल करना कितना जरूरी है, उनके रास्ते में क्या लगता है किस तरह की कठिनाइयां हैं अभी?
तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि जितने भी 6 क्लाइमेट एक्शन पॉइंट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। और इसमें मुझे लगता है एक राष्ट्र या फिर 2 राष्ट्र को ही बस काम नहीं करना है, लेकिन एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हम लोग को एक साथ इस पे काम करना है, इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन में हमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है वो किसी एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या फिर दो को नहीं, इट इज इम्पैक्टिंग एवरी वन एंड ऑल द कंट्रीज. तो इस तरह से मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जिस तरह से प्रस्ताव दिए हैं, सभी राष्ट्र एक साथ आके इस पे काम करना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ राष्ट्रों के साथ साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे यूथ हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, और गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सारे लोगों को एकजुट होके इस पे काम करना बहुत जरूरी है.
तो भविष्य की क्या योजना है इस नई भूमिका के साथ? जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बदलाव लाने की क्या रणनीति रहेगी?
युवाओं के पास अलग अलग कला है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज है या फिर जो उनके पास कला है, उसी कला के द्वारा हम लोग को क्लाइमेट एक्शन की बात को आगे बढ़ाना है. तो ये एक मुझे लगता है कि क्रिएटिवली वी नीड टू एंगेज इन डिमांडिंग क्लाइमेट एक्शन. दूसरी बात मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक स्तर पे हम लोग को इसकी चर्चा करनी नहीं करनी है, बल्कि एकदम ग्रास रूट से लेके ऊपर लेवल तक चर्चा करनी है. तो मेरी जो इच्छा है कि हम लोग अगर क्लाइमेट एक्शन ग्रुप्स बना रहे, हम लोग गांव स्तर से शुरू करें, फिर रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और इंटरनेशनल, ताकि हम लोग सब कोई एवरी इंडिविजुअल यूथ इसमें इकट्ठा हो. दूसरी बात मुझे ये भी मैं ये कहना चाहूंगी कि युवाएं पिछले कुछ साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को लेके. तो मेरी उनसे बस यही मैसेज है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस चीज को हम लोग को कंटिन्यू करने की जरूरत है, और इस चीज में हम लोग को सबको संगठित होके एक साथ जुड़ के करने की जरूरत है. चौथा चीज जो मैं बोलना चाहूंगी विशेष करके आदिवासी युवाओं के लिए, कि हमें अपने पूर्वजों के पास वापस जाना पड़ेगा, उनसे संस्कृति सीखना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग एक फ्रंटलाइनर्स बन पाए क्लाइमेट एक्शन में, ये देखना पड़ेगा. और लास्टली मुझे ये लगता है कि हम युवाएं डिसाइड करेंगे कि क्लाइमेट एक्शन कैसे होगा, क्योंकि आगे की पीढ़ी में हम ही लोग ही रहने वाले हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेक होल्डर्स टू लिसन टू आवर वॉइस एंड एक्नॉलेज आवर वॉइस.